संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ये पुस्तक सबके हाथ में है, उसका पेज नंबर 356 निकालिए। एक छंद है, उसे पढ़िए।
तथापि न निरर्गलम् चरेत्वमिष्यते ज्ञानिनाम् तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्याप्रति अकामकृत कर्म तन्मतम कारणम् ज्ञानिनाम् द्वयम् नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च।
तो भी निरर्गल प्रवर तन तो ज्ञानियों को वर्ज है क्यों, ई निरर्गल प्रवर तन तो बंध का स्थान है। पांचारहित जो प्रवर तन वह बंध विरहित जानिए, जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए।
विगत 10 गाथाओं में और उसके साथ आए कलशों में यह बात बहुत विस्तार से स्पष्ट की कि ना तो कारमान वैगुणाओं के कारण कर्म से यह आत्मा बंधा है, ना मन वचन काय के चंचल योग से आत्मा बंधा है, और ना करण उनसे करणों से मन इंद्रियों से आत्मा बना है, और ना चेतन अचेतन की हिंसा से आत्मा को बंद होता है। तब एक प्रश्न सहज ही खड़ा होता है कि हम अकेला रागादि न करें और फिर कर्म के बीच में भी रहें, मन वचन काय को भी कितना ही चंचल रखें, इंद्रियों में के विषयों में भी प्रवृत्ति करें और चेतन अचेतन की हिंसा का भी विचार न रखें, तो बंद तो होगा नहीं, क्योंकि इनसे तो बंद होता नहीं है। ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति न हो जाए, इसके लिए सावधान करने के लिए ये कलश है। अमरचंद्राचार्य देव ने ये कलश लिखा। कुंभ कुंभ के समय में तो शायद ऐसे अज्ञानी लोग नहीं रहे होंगे कि उन्हें ज्यादा उसकी चिंता करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन अमर चंद्र तक आते आते ऐसे लोग मिल गए होंगे। फिर क्या है, मौज मस्ती करो, भरी पल्ली ओढ़ो, गिनोड़ा खाओ, मुख चले जाओ। अच्छा सस्ता धर्म है, सदाचार की जीवन में आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए कलश लिखा है कि तथापि न निरर्गलम चरितुम इष्यते ज्ञानिनाम, ऐसा होने पर भी ज्ञानियों को निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, अथवा ज्ञानी जन निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करते हैं। तथापि है ना, एक कलश तथापि से शुरू होता है, और आप भाषा को यदि थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो तथापि हमेशा यद्यपि के बाद आती है। यद्यपि नहीं हो तो तथापि आ ही नहीं सकता। तो यद्यपि में क्या है फिर, यद्यपि में ये है कि यद्यपि कर्मों से आत्मा नहीं बना है, यद्यपि मन वचन काय की चंचलता से भी आत्मा नहीं बनता है, यद्यपि कर्णों के उपयोग से भी आत्मा नहीं बनता है और चेतन अचेतन की हिंसा से भी आत्मा नहीं बनता है, ये चार यद्यपि लग गई, और उसके बाद तथापि आया है। एक महामंत्र बता देता हूं शांति जी, आप ध्यान रखोगे तो सारे देश में चला जाएगा, क्योंकि अभी अब पढ़ाओगे आदमी छाती इन सबको विद्यार्थियों को कि ये उपयोग और उपभोग दो शब्द हैं, बस इतना ही फर्क है कि वो इंद्रियों के मामले में है। तो ये अमृतचंद्र तो कह रहा है इंद्रियों के उपयोग से, और कलस्टिका वाले कह रहे हैं, बनासी राज कह रहे हैं इंद्रियों के उपभोग से। तो कलप ने छंद पड़ा था ना, जहां उपभोग था वहां उपयोग कर दो तो बस वो बात हो जाएगी पहली वाली, उपभोग कर दो तो दूसरी वाली बात हो जाएगी। हो सकता है कि अपना ये उपयोग ही रहा हो, और उपभोग और उपभोग हो जाना प्रेस में बहुत आसान है, विद्वानों से भी हो जाना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत दोनों में किसी में भी नहीं है। उपभोग लिखो तो समझ लो क्या कलश टीका के आधार पर लिखा है, और उपयोग लिखो तो समझ लो अपने ख्याति के आधार पर लिखा है। मिल गया, समझ में आ गया कि नहीं? किस किस की समझ में आया जो मैंने अभी बात कही उपयोग और उपभोग के बारे में? हाथ उठाए जरा, पूछना नहीं है, सिर्फ जानना है कितने लोगों की समझ में आया, दो चार लोगों का नहीं है। थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। अपन ने जो तीन चार व्याख्यान अभी किए उनमें दो मतभेद सामने आए थे कि करण को तीसरे स्थान पर रखा और चेतना चेतन की हिंसा के चौथे स्थान पर, और दूसरे बनारसी दास ने और राजमल जी ने करण को रखा चौथे स्थान पर और हिंसा चेतना चेतन को रखा तीसरे स्थान पर, और इन्होंने करण का उपयोग किया करण इंद्रियों के उपयोग, इंद्रियों का उपयोग मैंने पर को जानने में उपयोग किया, और उनने लिखा उपभोग माने इंद्रियों से पांच इंद्रियों के विषयों को भोगना। इंद्रियों के दो काम है भाई साहब, ये इंद्रिय वाले पाठ में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया होगा, कि इंद्रियों के दो पक्ष होते हैं, गे पक्ष और एक भोग पक्ष। माने इंद्रियां दो काम आती हैं हमारे, कि आत्मा इनसे जानने का भी काम करता है और मजा लेने का काम भी करता है। हम आंख से क्या है सामने ये देखने का भी काम करते हैं, और जब हम कोई सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं सिनेमा के या कोई भी, तो हम उसे चक्षु इंद्रिय का वो भोग है। कान इनसे सुनना प्रवचन सुन रहे हैं, ये है इसका उपयोग। और भैया इनका गला कैसा है, कोई अच्छा जो गला वाला हो वो बोले तो मजा आ जाता। तो तुमने समय सार सुन के भी पांच इंद्रियों के भोग भोगा, क्योंकि तुम्हें समय सार भी मीठी भाषा में चाहिए, मधुर कंठ से चाहिए। और जिनका अब सद्भाग्य कहें चाहे दुर्भाग्य कुछ भी कह लेना, कंठ बहुत अच्छा है, वो लोग उसका उपयोग अपने प्रवचनों में बहुत करते हैं जनता को रिझाने के लिए। मेरे हिसाब से उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्यों कि जो हम समझने समझाने का काम कर रहे हैं वे उसे वो भोग की वस्तु बना देते हैं। आप कहते हैं आपका ठीक नहीं है इसलिए आप ऐसा कहते हैं, मेरा मतलब नहीं, देखो उनका दुर्भाग्य है। क्यों? क्यों कि गला अच्छा होने से लोग उनके गले पे ध्यान देते हैं, उनकी बुद्धि पे ध्यान नहीं देते। उनने अपनी बुद्धि के विवेक से जो तत्व का मर्म आपको समझाया है उस पर आपका ध्यान नहीं जाता, और उनके गाने पे ध्यान जाता है। और थोड़ी आगे और बोल दूं, पहले बोला है मैंने कई दफे कि एक गले वाले गवैया बन जाते हैं पंडित से, फिर ये प्रतिष्ठाओं में रस लेने लगते हैं, फिर ये वेदी प्रतिष्ठा अपन कराए प्रतिष्ठा विधान अपने गले के दम पर, वो तत्वज्ञ विद्वानों से भी बड़े विद्वान बन जाते हैं। हाँ? क्या नाम है तेरा? अभिनय है वही है ना जिसका मैं सही जगह पूछा समझे ना, उनका रस उसमें ज्यादा होता है, समाज बुलाता भी उन्हें इसीलिए है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी ने हम विद्वान से गवैया हम खुद बने कि हमें किसी ने बनाया है, बोलो है? माने इस लैंड में चले जाते हैं तो उनका तात्विक अध्ययन कमजोर हो जाता, जिनका कमजोर हो जाता उनकी बात कर रहा हूं मैं, और जिनका नहीं हुआ है और फिर भी वे अपने गले का उपयोग कर लेते हैं तो वो कोई बड़ी गलती नहीं है, बड़ी गलती नहीं है, माफ के काबिल अपराध है क्या? लेकिन जो सचमुच इस तत्व ज्ञान की धारा से अपने को अलग कर लेते हैं वो तो उनका तो सचमुच उनके अभाग्य की महिमा तो हम कह नहीं सकते कि इतना वीतरागी परम तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उसको अपनी वर्ग का अंग नहीं बनाया और वो दूसरी चीज को अपना अंग बनाने की कोशिश की। तो देखो कहते हैं उपभोग और उपयोग का अंतर अब तो समझ में आ रहेगा कि नहीं है? फर्क कुछ नहीं है क्योंकि दोनों ही चले आए ना धारा में, उपभोग किया हो तो समझ लेना वो बनारसी दास से लिया है इंद्रियों का उपभोग, और उपयोग करे तो, और उपभोग के भी दो ही अर्थ होते हैं, जानना भी ये उपभोग ही है एक तरीके से पांच इंद्रियों का के द्वारा, क्योंकि पांच इंद्रियों के माध्यम से जो आत्मा का जानना होता है वो आत्मा का तो होता नहीं, वो तो पौद्गलिक रूप रंग का ही होता है, इसलिए वो भी एक तरह से उपभोग ही है। लेकिन इस जगत में वो आनंद लेने वाला जो पक्ष है इंद्रियों के माध्यम से उसकी जितनी निंदा करो जगत बर्दाश्त करता है, और वो जानने वाला पक्ष है उसके बारे में कुछ कहो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो हो गया, हम तुम्हारा समय सार ही नहीं सुने इन कानों से, तो नहीं सुने हम समय सार नहीं पढ़े इन आंखों से, ये भी पाप हो गया हमारी आंखों का क्या? इसमें क्या हो गया कि तुमने भैया इनने क्या क्या किया कि तुम्हें आत्मा की शोध में यहां ले गई, ये आत्मा की शोध में यहां नहीं ले गई क्या? कान से सुना और आंख से पढ़ा तो आंख की आत्मा की शोध में शास्त्रों की तरफ ले गई, प्रवचनों की तरफ ले गई, और कुंद कुंद को लिखना पड़ा शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। जो कुछ नहीं जानते हम उनसे जानना चाहते हैं, इसके बाद तथापि कि तथापि न निरर्गलम चरतुम इष्यते ज्ञानिनाम, ज्ञानियों को निरर्गल प्रवृत्ति करना उचित नहीं है अथवा ज्ञानी जन निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करते। अब आप ये कहोगे कि जब उसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, उससे हमें कोई बंध होता ही नहीं, उससे हमें कोई नुकसान होता ही नहीं, तो फिर उसके निषेध का क्या कारण है? बहुत मार्मिक बात है। तद आयतन मेव साकिल निरर्गला व्यावृत्ति, कहते वो उसके आयतन है। आयतन क्या होता है? अनायतन तो सुने होंगे आपने, अनायतन सुने लेकिन आयतन नहीं सुने क्यों? ये मंदिर क्या है? आयतन है ना, धर्म आयतन, समझे ना? आयतन माने घर, धर्म का घर। तो वो कहते हैं कि ये जो पांच बिंदियों की प्रवृत्ति है, भोग हैं, ये मिथ्यात्व के आयतन हैं, यानी राग के आयतन है, समझ लो। अभी राग शब्द रखो अभी, यद्यपि यहां मिथ्यात्व ही है। पूरे समय सार में राग कहें तो मिथ्यात्व समझना, बहुत कम जगह आएगा जो चारित्र मुहे के अर्थ में आएगा। यहां चारित्र मुहे संबंधी राग का निषेध भी नहीं कर रहे। देखो क्या कह रहा है, पांच इंद्रियों के विषयों का उपभोग बिना राग के संभव नहीं है। क्या हम किसी को यदि जम के देख रहे हैं टकटकी लगा के, तो वो बिना राग के संभव नहीं है। सुनिए, ऐसे पांच इंद्रियों के विषय में लगा लेना। कर्मान योग भी इसका समर्थन करता है। क्या करता है कि मंद का उदय होता है तब पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। संज्वलन नो कसायो उदयो मंदो तदा जदा हो जी। मतलब मंद उदय होता है संज्वलन नो कसाय का, तो कोई भोग की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, अप्रमत्त को नुकसान हो जाता है, सात में आठ में नौ में चल जाता है। वहां राग विद्वान है लेकिन मंद है ना, तो तीव्र राग में ही ये प्रवृत्ति देखी जाती है। देखो थोड़ी गंभीरता से विचार करना, अपने यहां प्रवचन सुन रहे, तो पांच इंद्रियों के विषयों का जो भोग वाला असंयम अपना है वो इस वक्त चला गया क्या? वो इस वक्त है क्या नहीं है? माने अप्रत्याख्याना बहन कर्म का उदय है क्या नहीं है? और अनंतानबंदी का जिनका है भाग्यशालियों का उनका तो कह नहीं क्या? लेकिन वो भोग का निमित्त अप्रत्याख्याना बहन का बनता है ना, तो उसका उदय अभी भी है। स्पर्श इंद्रिय के भोग का भाव अभी भी विद्यमान है, ये समझना। रसना इंद्रिय के भोग का भाव अभी भी विद्यमान है। ध्यान चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय के भोग का भाव अभी भी विद्यमान है, लेकिन वो मंद है, बस इतनी सी बात है। जब तक एक लेवल की तीव्रता भी एक लेवल से ऊपर होती है तब ये पांच इंद्रियों के भोग देखने में आते हैं। अकेले तीव्र से भी काम नहीं होता राजेंद्र जी,